قرآن 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 آسان درس قرآن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے آسان درس قرآن. سورة البقرہ کی آیت نمبر 265 کا درس ہم نے سنا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی تھی اور اس مثال کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہو جو بلند زمین پر ہو، اگر بہت اچھی زوردار بارش ہو تو بہت اچھا پھل نکلے گا، لیکن اگر ایسی بارش نہ ہو تو ہلکی پھلکی بارش بھی وہاں کی زرخیزی سے پھل برآمد کر دیتی ہے. مقصد یہ کہ رضا الہی موجود ہو تو عمل بڑا ہو یا تھوڑا، دونوں صورتوں میں اس سے ثمرہ مل جاتا ہے. اب اگلی آیت کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ تو کیا جائے لیکن اس میں ریاکاری ہو، اس میں دکھلاوا ہو، اس میں کوئی دنیاوی مقصد اصل مطلوب ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنی طرف سے تو یہ سمجھے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور اس کا صلہ ملے گا، لیکن ہوگا یہ کہ اس کا یہ سارا عمل برباد ہو جائے گا. اب اس کی جو مثال بیان فرمائی ہے، پہلے میں آیت ترجمہ اور وہ مثال بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِّن كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِّن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيْشِنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. فرمایا کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں؟ اس بندے کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس آدمی کو بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے. اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ جو مثال ہے اس میں بیان یہ فرمایا گیا کہ کسی شخص کا ایک باغ ہے جس میں کھجوریں ہیں، انگور لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس باغ کا پھل مجھے میری ضرورت کے وقت فائدہ دے گا. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ آدمی بوڑھا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں یہ باغ میری زندگی کا ایک ذریعہ بنے گا، میرے روزگار کا ایک ذریعہ بنے گا. تو اب خود بوڑھا ہے، یہ بھی محتاجی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی اس کی محتاجی، اور ایک باغ کے اوپر اس کا سہارا ہے، دار و مدار ہے. لیکن ہوا یہ کہ اس باغ کو ایسا ایک گرم ہوا کا جھونکا آیا اور ایسا بگولا آیا کہ جس کی وجہ سے وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ بڑی محنتوں سے جو باغ اس نے بنایا اور جس میں اس نے بیج کاشت کیا اور جس پہ بڑا سہارا تھا، اس کی ضرورت کے وقت وہ ختم ہو گیا. اب اس بندے کی حسرت، اس کا افسوس کیسا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جو اس سے ہمیں سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کی راہ میں 100 रुपया दें या 1000 दें या लाख दें या करोड़ दें, हमारे देने का क्या मकसद है? हमारे देने का मकसद ये है कि क़यामत का दिन, जो हमारी हाजत का दिन है, जिस दिन हमें नेकियों की बहुत ज़रूरत होगी, तो अब हम इसलिए खर्च करते हैं कि उस ज़रूरत के दिन ये खर्च हमें काम आए। लेकिन जब बंदा उसी माल को जो खर्च करता है रियाकारी के लिए खर्च करता है, दिखलावे के लिए खर्च करता है, तो अब मेहनत मशक्कत तो हो गई कि अपना माल उसने दिया, लेकिन जब वो ज़रूरत का दिन आएगा, क़यामत का दिन आएगा, तो चूंकि ये खर्च करना ये रियाकारी की वजह से था, अल्लाह की रिजा के लिए नहीं था, तो नतीजा ये होगा कि क़यामत के दिन उसका गोया नेकियों का बाग सारा जला हुआ होगा और उसे मिलेगा कुछ नहीं। तो ये समझाना मकसूद है कि अल्लाह की राह में खर्च करें, लेकिन उसके साथ इखलास होना चाहिए, अल्लाह की रिजा मतलूब और मकसूद होनी चाहिए। अगर रियाकारी के लिए खर्च किया तो मशक्क़त भी उठा ली, पैसे भी दे दिए, लेकिन नतीजा ये निकलेगा कि मिलेगा कुछ नहीं। ये है जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो, ताकि तुम सोचो कि रियाकारी नहीं करनी, अल्लाह की रिजा और इखलास के तौर पे अल्लाह की राह में खर्च करना है। इसके बाद इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममु الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد। ए ईमान वालों, अपनी पाक कमाइयों में से और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो, और ख़र्च करते हुए ख़ास नाकिस माल देने का इरादा ना करो, हालांकि अगर वही नाकिस माल तुम्हें दिया जाए तो तुम उसे चश्म पोशी किए बग़ैर कबूल नहीं करोगे। और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह हमद के लायक है। यह आयत मुबारक जो है, ये राह खुदा में खर्च करने में जो लोगों की दूसरी खामी है उसे बयान करती है। पहले क्या था? रियाकारी। दूसरी खामी ये है कि बास लोग रियाकारी तो नहीं करते, लेकिन करते क्या हैं कि अपने माल में जो सबसे नाकिस माल है, जो इस्तेमाल बस जैसे तैसे ही होगा, वो उठा के दे देते। जैसे क्या होता है कि कपड़े के ताजिरान ज़कात के अंदर वो वाला कपड़ा देते हैं जिसका डिज़ाइन और फैशन और सीज़न सब ख़त्म हो चुका, कहते हैं अल्लाह की राह में दे दो। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं कि अपने अपने शोबे के अतबार से नाकिस, घटिया, रद्दी चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? दे तो अल्लाह की राह में रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका कसद नहीं करो कि तुम घटिया माल अल्लाह की राह में दो। हालांकि यही माल अगर तुम्हें दिया जाए तो क्या करोगे? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मजबूरी से तुम कबूल करोगे। तो जो माल तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है वो अल्लाह की राह में कैसे देते हो? तो लिहाजा अल्लाह ताला की राह में देते हुए ऐसा माल ना दिया जाए कि जिसे इस्तेमाल करने वाला ही बेचारा शर्मिंदा हो, या जिसे इस्तेमाल करने वाला भी बड़ी कराहत के साथ और मजबूरी और नापसंदीदगी के साथ खर्च करे, इस्तेमाल करे। ऐसा माल अल्लाह की राह में ना दो। और फिर फरमाया कि जान लो अल्लाह बेपरवाह है, उसे तुम्हारे अच्छे बुरे माल की कोई परवाह नहीं। तुम बेहतरीन माल दे दो, खुदा को फ़ायदा नहीं। तुम घटिया तरीन माल दे दो, खुदा को नुकसान नहीं। उसे कायनात में किसी से की हाजत ही नहीं, और तुम्हारे देने से खुदा की शान में कोई इजाफा नहीं हो जाएगा कि और हमद होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हमेशा से हमद का मुस्तहिक है, काबिल तारीफ है, लायक तारीफ है, हमद उसी की शान के लायक है। तो फरमाया कि ऐसा ना किया करो। दूसरी बात फरमाई कि जो अपनी पाक कमाइयाँ हैं इसमें से अल्लाह की राह में दिया करो। तो इसमें तो एक तो ज़कात ही है कि ज़कात जो है वो साल के बाद दी जाती है, और दूसरा इसके अलावा भी अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करो। एक और यहाँ जो अहम मसला बयान किया वो है ज़मीन की पैदावार, जिसे उश्र आमतौर पर कहा जाता है। उश्र भी होता है, निसफ़े उश्र भी होता है। तो अल्लाह की राह में जो तुम्हारी ज़मीन की पैदावार है उसमें से दिया करो। एक आदमी का बाग है, फसल है, तो अब उससे जो पैदावार होगी उसका दसवां हिस्सा अल्लाह की राह में देना उसकी ज़कात होगा। जैसे माल की ज़कात होती है, इसी तरह जानवरों में भी ज़कात होती है, यानी उनमें से भी ज़कात अदा की जाती है। और इसी तरह जो पैदावार है, जो ज़मीन की पैदावार है, खा वो बाग हो या फसल हो, उसकी भी ज़कात दी जाती है। तो यहाँ पर वो जो उश्र का मसला है उसे बयान फरमाया कि अपनी पैदावार में से भी अल्लाह की राह में ज़कात दिया करो। और ये जो हुकूमत को टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, ये उश्र नहीं होता, ये हुकूमती टैक्स हैं, ये दूसरी चीज़ें। उश्र इबादत है, वो टैक्स नहीं है। उश्र इबादत है, वो लगान नहीं है। लिहाजा उश्र जो है वो अल्लाह की राह में जो गरीबों को देना है वो अपनी जगह पे देना ही होगा। अब इसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि राह खुदा में ख़र्च करने में ये घटिया माल देना या और इस तरह की हीले बहाने करना, इसके पीछे सबब क्या होता है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फिरतन मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फ़ज़ल का वादा फरमाता है, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। राह खुदा में ख़र्च करने में रुकावट क्या है कि बंदा ख़र्च करने लगता है तो शैतान वसवसा डालता है, अरे दे दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे। तो अब शैतान का वसवसा वो बुनियादी चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान राह खुदा में ख़र्च करने से रुकता है। अच्छा, लेकिन होता क्या है, यही पैसा जब नफसानी ख्वाहिशात के लिए या बुराई के लिए या बेहयाई के लिए खर्च करना हो, तब ये जहन में नहीं आता कि खर्च करेंगे तो क्या होगा। फिर होता है कि बस लज्जत मिलनी चाहिए, चलो जी खर्च कर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये शैतान का चक्कर होता है कि तुम्हें मोहताजी से, नादारी से तो डराता है लेकिन बेहयाई का हुक्म देता है। जबकि राह खुदा में खर्च करने से होगा क्या, फरमाया कि अल्लाह की तरफ से फजल मिलेगा, बख्शिश मिलेगी। तो लिहाजा जब बंदा पैसे नहीं देखता, रब का फजल देखता है। जब बंदा पैसे नहीं देखता, अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और मगफिरत देखता है, तो उसका दिल खुल जाता है अल्लाह की राह में देने के लिए। तो फरमाया अल्लाह वसअत वाला है, इल्म वाला है, उसके ख़जाने बड़े वसी हैं, वो तुम्हें दुनिया में भी बदला देगा, आखिरत में भी बदला देगा। और खुदा जानता है कि जिसके दिल में जितना इखलास है, खुदा इल्म वाला है। अब इसके बाद इरशाद फरमाया, युति الحكمت من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज़्यादा भलाई मिल गई, और अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि दुनियावी दौलत से बड़ी शय अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा हिकमत है, वो दानिशमंदी है, वो सही फहम, सही सोच है, जिसके नतीजे में बंदा आखिरत को इख्तियार करता है और दुनिया को मुअख्खर करता है, जिसके नतीजे में रिजा इलाही को मुकद्दम करता है और मखलूक की रिजा को पीछे रखता है। तो जिसे ये हिकमत, ये समझ, ये फहम अता किया जाए तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा भलाई अता कर दी गई। ये जो हिकमत का बयान फरमाया, हिकमत के बहुत से मानी बयान फरमाए गए हैं। हिकमत से मुराद कुरान भी है कि जिसे कुरान मिला उसे दुनिया की दौलत की ज़रूरत नहीं। हदीस है, फ़िक़ इल्म है, उसके बारे में बतौर ख़ास है कि हिकमत से मुराद फ़िक़। इसी तरह तकवा की दौलत है। तो अब क्या है कि जिसे कुरान, हदीस, फ़िक़, इल्म दीन मिला, वो दुनिया की दौलत की तरफ नज़र ना करे, वो दौलतमंदों को, मालदारों को देख के ये ना कहे कि यार नसीब तो इनका है, देखो गाड़ियों में घूमते हैं, देखो कैसा शानदार लविश लाइफ गुजारते हैं। नहीं, जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत दी, कुरान का इल्म दिया, हदीस का इल्म दिया, फ़िक़ का इल्म दिया, तो ये हिकमत अता कर दी गई। और जिसे हिकमत अता की गई है, ये बाकी हर दौलत से बड़ी दौलत है। तो लिहाजा इसकी तरफ जो है तवज्जो ना की जाए। और फिर इसके साथ एक और बात कि नबूवत जो है ये भी सरासर हिकमत है। तो जिसे नबूवत अता की गई उसे खैर कसीर अता की गई। लेकिन ये बात याद रखने की है और कतई है कि हमारे नबी صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی. تو جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ. اب اس کے بعد مزید راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّن أَنصَارٍ. اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نذر مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جو ظلم کر کے کفر کماتے ہیں تو کافروں کا کوئی مددگار ہے، جو گناہگار ہیں ان کے لیے تو شفاعت ہے تو ان کی تو مدد ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں ولیوں کے وسیلے سے، لیکن جو کافر ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پہ بصورت کفر، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور اس کے علاوہ جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، جو اللہ کی نظر مانی جائے، تو اللہ اسے جانتا ہے. نظر جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظر شرعی، نظر فقہی، یہ عبادت ہے. جیسے کوئی بندہ یہ نظر مانتا ہے، جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے روپے خرچ کروں گا، یا میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، یا میں خدا کے لیے اعتکاف کروں گا اتنے دن کا، تو یہ ہے نظر فقہی، نظر شرعی. نظر غیر فقہی ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں لفظ نظر بطور عبادت نہیں ہے، بلکہ نظر کا لفظ بطور نذرانہ کے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی عاجزی کے ساتھ اگر کسی کے سامنے کوئی چھوٹا بڑے کو کوئی چیز پیش کرے تو کہتے ہیں جی یہ آپ کی نظر، یہ میں نے آپ کی نظر کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک تعظیم کا انداز ہے. تو جو اولیاء کرام کی نظر مانی جاتی ہے، غوث پاک کی نظر، داتا صاحب کی نظر، فلاں ولی کی نظر، یہ پہلی والی نظر نہیں ہے، کیونکہ پہلی والی نظر عبادت اور وہ اللہ کے لیے. یہ والی جو نظر ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کر کے جو اس کا ثواب ہے یہ بطور نذرانہ کے ہم فلاں ولی کو پیش کریں گے. تو یہ نذرانے کے طور پہ پیش کرنا ہے، اس نذرانے کو نظر کہہ دیتے ہیں، بس یہ اتنی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسی لیے جو پہلی نظر ہے نظر فقہی، اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو ولیوں کی نظر مانی جاتی ہے اسے پورا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ وہ نظر عبادت ہے ہی نہیں کہ جو بندے پہ لازم ہو جائے. ہاں پوری کرنی چاہیے، کرنی ہو چاہیے کہ بندے نے ایک نیکی کا ارادہ کیا تو پھر پورا بھی کر لے، بس اس اعتبار سے. اب اس کے بعد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے کچھ آداب بیان کیے. ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ اعلانیہ خرچ کرنا بھی اچھی بات ہے، اگر مسجد میں پیسے دیے، مدرسے میں پیسے دیے، کسی یتیم کی مدد کی اور یہ دوسروں کے سامنے کی، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ریاکاری ہی ہے، ایسا نہیں، کیونکہ ریاکاری تو دل کی نیت اور ارادے کا نام ہے، کہ وہاں فساد ہے تو ریاکاری ہوگی. تو اگر نیکی کا کام اعلانیہ کیا جائے تو فرمایا یہ بھی کیا ہی اچھا ہے. جیسے مسجد کا چندہ ہوتا ہے تو سارے لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں جمعے والے دن، یا کوئی اور موقع ہے کہ مسجد کے باہر اعلان ہو رہا ہے اور جو آتا ہے جیب سے پیسے نکال کر ڈال دیتا ہے، یا کوئی چندہ باکس رکھا ہوا ہے تو دوسروں کے سامنے پیسے ڈال دیے، تو یہ اعلانیہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی کیا ہی اچھی بات ہے، تو یہ منع نہیں ہے، اچھی بات ہے. ہاں اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کے سامنے دینے کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، چھپا کر دینے میں کیا ریاکاری آئے گی. تو لہذا یہ طریقہ اس اعتبار سے بہتر ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پہ اعلانیہ دینا نہیں اور بعد میں چھپا کر بھی نہیں دینا، کہ اعلانیہ اس لیے نہیں دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں توفیق ہی نہیں ہوئی، تو اس چکر میں نہ ادھر دیا نہ ادھر دیا، نہ ویسے دیا نہ ایسے دیا، یہ نہیں، تو پھر وہاں پر دے دیا جائے. اور پھر اس میں بھی جو علماء ہیں، جو مشائخ کرام ہیں، جو پیران عظام ہیں، جو مقتدا پیشوا لوگ ہیں، وہ اگر لوگوں کے سامنے اگر خرچ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس میں دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے. تو جس کا عمل دوسروں کے لیے سبب بنے اقتداء کا اور عمل کرنے کا، تو اس کا دوسروں کے سامنے دینا زیادہ فائدہ مند ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کچھ برائیاں خدا مٹا دے گا، क्योंकि नेक अमल से कबीरा गुना माफ़ नहीं होते, सगीरा होते हैं। तो फरमाया तुम्हारी कुछ बुराइयाँ मिटा देगा और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। इसके बाद फरमाया लैसा अलैका हुदा हूँ वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फली अन्फुसिकुम वमा तुन्फिकूना इल्ला बतिगा वजहिल्लाह वमा तुन्फिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। लोगों को हिदायत दे देना ए नबी तुम पर लाजिम नहीं, हाँ अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और तुम जो अच्छी चीज़ खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। ये बहुत सी बातें इस आयत में बयान फरमाई हैं, वो तर्जमे से वाज़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी ये रखी थी कि आप लोगों को दीन की दावत दें, अल्लाह की तरफ बुलाएं। लोगों को हिदायत दे देना ये नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम की ज़िम्मेदारी नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह अपनी मशीयत से, हिकमत से, अपनी तकवीनी हिकमत से जैसे चाहे करे। तो लिहाजा जब किसी पे कोशिश की जाए कि ये बंदा नमाज की तरफ आ जाए, हिदायत की तरफ आ जाए, तो ये नहीं है कि पकड़ के मस्जिद में बिठा के छोड़ना है, उसे दावत देनी है अच्छे से अच्छे तरीके से। अब उसके बाद वो अमल कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम को ये फरमाया गया और आपकी इत्तिबा में हमारी ज़िम्मेदारी भी, यानी कि उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी भी यही है। फिर उसके बाद फरमाया कि तुम जो खर्च करते हो इसका फ़ायदा तुम्हें ही मिलेगा, दुनिया में भी फ़ायदा, आखिरत में भी फ़ायदा। और फरमाया जो खर्च करो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, और फरमाया कि जो खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और पूरा पूरा कैसा बदला? अल्लाह अपने फजल से पता नहीं कितना ज़्यादा अता करेगा। एक रुपया खर्च करेगा बंदा तो अल्लाह ताला 10 रुपये खर्च करने का सवाब देता है, और 10 में इन्हिसार नहीं है कि एंड है, 10 से ऊपर नहीं देना, नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो 700 गुना अता फरमा दे, ये भी कुरान में, और इससे भी ज़्यादा अता कर दे, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी। तो फरमाया कि जो खर्च करोगे पूरा पूरा दिया जाएगा, ज्यादती नहीं होगी कि तुमने खर्च तो किया लेकिन बदला तुम्हें मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फरमाया लिल फुकरा الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم। फरमाया उन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, वो ज़मीन में चल फिर नहीं सकते, ना वाकिफ आदमी उन्हें सवाल करने से बचने की वजह से मालदार समझते हैं, तुम उन्हें उनकी अलामत से पहचान लोगे, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। इससे पीछे जितनी आयतें गुजरी इन सब में बयान क्या किया गया? राह खुदा में खर्च करना। अब यहाँ से ये बयान किया कि किन पर खर्च करना है, इसके मुस्तहिक कौन है कि जिनको अल्लाह की राह में ये माल दिया जाए। तो फरमाया वो गरीब आदमी कि जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, जो कमाने के लिए ज़मीन में चल फिर नहीं सकते। कौन? इसके बहुत सारे मिस्ताक हैं। एक तो इसमें अस्हाबे सुफा शामिल हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए और वो मोहताज थे, उनके पास कुंबा कबीला ये कुछ नहीं था, इसी तरह मदीने ही के जो गरीब सहाबा थे, तो ये तकरीबन 400 के करीब ऊपर नीचे होते रहते थे। तो ये अफराद सुफ़ा एक चबूतरे पे रहते थे। अब ये इन्होंने अपने आप को इल्म दीन के लिए, दीन सीखने के लिए वक्फ किया हुआ था। तो अब फरमाया कि ये जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, जिन्होंने अपनी मसरूफियात दीगर कामों से काट कर लिल्लाह कर दी, तो अब होता क्या है कि कुछ का तो पता चल जाता है कि ये मोहताज हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके बारे में उनके देखने से ऐसा पता नहीं चलता कि ये मोहताज हैं, जिसे हम अपनी ज़बान में सफ़ेदपोश कहते हैं, कि पता नहीं चलता कि ये बंदा ज़रूरतमंद है। तो फरमाया कि वो लोगों के पीछे लिपट कर पढ़ के मांगते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जो गुजरा उसको बोला यार पैसे दे दो थोड़े से, बड़ी मोहताजी है, ज़रूरत है, फरमाया ऐसा नहीं होता। हाँ, तुम उन्हें उनकी अलामत से पहचान लोगे, कि तुम्हें थोड़ा सा नज़र आ जाएगा कि यार बंदा परेशान है, इसके हालत ऐसी लग रही है कि जैसे ये ज़रूरतमंद है। तो फरमाया कि ये जो लोग हैं ये ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अब इसी में बहुत सारे अफराद हैं, इसी के अंदर उलमा भी हैं, इसी के अंदर दीन के मुबल्लिगीन भी हैं, कि जिन्होंने बकिया मसरूफियात ख़त्म कर दी और अपने आप को दीन के लिए रोक लिया। तो अब बकिया काम से रोक दिए गए, अब ये कमाई के लिए इधर उधर नहीं जाते, इन्होंने अपने आप को दीन के लिए लगा दिया। तो फरमाया ये मुस्तहिक हैं कि तुम इन पर खर्च करो। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जनाब ये अल्लाह के लिए जो है ना ये दीन के काम करे और बाकी कमाई करे। तो वैसे तो उसका जवाब ये कि भाई साहब आप ही कर लो फिर, ठीक है ना, आप दीन का भी काम कर लो साथ में कमाई भी कर लो। एक बंदा सुबह 9 to 5 जो है वो 8 घंटे वो दीन के लिए ड्यूटी देता है, और अब आप उसको बोलो कि ये काम तो करे बगैर पैसे के और बाद में रात में कमाई करे, तो ऐसा कौन कर सकता है? चंद अफराद होंगे जो इस तरह कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपने आप को दीन के लिए रखा हुआ है उनकी खिदमत करना, उन पर खर्च करना, ये बहुत बड़ी इबादत और सआदत और इस आयत मुबारका का मिस्ताक है। तो लिहाजा इन लोगों को बयान फरमाया गया। अब इसके बाद राह खुदा में खर्च करने वालों की मजीद फजीलत फरमाए, अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम बिललैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो रात में और दिन में पोशीदा और एलानिया अपने माल खैरात करते हैं, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये जो आयत मुबारका है ये राह खुदा में खर्च करने के हवाले से बड़ा वसी माना रखती है। अल्लाह ताला ने बहुत सी सूरतों को इसमें बयान फरमा दिया, दिन में खर्च करें या रात में, एलानिया खर्च करें या पोशीदा। फरमाया जैसे भी खर्च करेगा मकसूद रिजा इलाही होगी तो इनका अजर इनके रब के पास है, और इन पर क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा और ना ये गमगीन होंगे। इसका जो शान नुज़ूल है, एक रिवायत के मुताबिक तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अनहु की ज़ात मुबारका है कि आपने दिन में भी खर्च किया रात में भी, एलानिया भी खर्च किया पोशीदा भी, तो आपकी शान में ये आयत उतरी। लेकिन अल्फाज जो है वो सबको आम है कि आज भी इस तरह कोई खर्च करे तो उसके लिए ये फजीलत है। अब इसके बाद, अब ये वो सारी सूरतें थी जो राह खुदा में खर्च करने की बात थी, और ये क्या थी कि वही माल अल्लाह की रज़ा कमाने का ज़रिया। अब इसके बाद वो सूरतें बयान की जा रही हैं कि माल वही है, पहले माल से जन्नत मिली, अब उस माल की बात होगी कि जिस माल से जहन्नम मिलेगी। पहले से खुदा की रज़ा मिली, ये वो सूरत है जिससे खुदा का गज़ब मिलेगा। वो क्या है? फरमाया अल्लज़ीन यकुलूना रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिथ्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैउ व हर्रमर रिबा فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ ये सज़ा इस वजह से है कि उन्होंने कहा खरीदो फरोख्त भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम किया। तो जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आई फिर वो बाज आ गया, तो जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आई फिर वो बाज आ गया, तो उसके लिए हलाल है वो जो पहले गुज़र चुका और उसका मामला अल्लाह के सिपुर्द है, और जो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो वो दोज़खी हैं, वो दोज़ख में मुद्दतों रहेंगे। तो ये माल वही है लेकिन यही माल अज़ाब जहन्नम का सबब, किस सूरत में? जबकि ये माल सूद के ज़रिए कमाया। तो यहाँ सूद की हुरमत बयान फरमाई कि जो सूद खाने वाले हैं ये क़यामत के दिन ऐसे होंगे कि जैसे पागल होता है, जैसे दुनिया में किसी को जिन विन आ जाए, किसी के ऊपर आसेब आ जाए, तो वो इधर गिरता फिरता अपने होश हवास खो बैठता है। तो फरमाया कि सूद खाने वाला क्यामत के दिन ऐसा होगा, पागल, खपती, दिमाग काम नहीं करेगा, गिरे पड़ेगा। और फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि उसने कहा था कि भाई खरीदो फरोख्त और सूद क्या फ़र्क है, खरीदो फरोख्त जो है ये सूद ही की तरह है, सूद खरीदो फरोख्त की तरह है। हम जब कोई माल बेचते हैं तो नफ़ा लेते हैं, तो सूद में क्या है कि हम पैसे देते हैं नफ़ा लेते हैं, तो जब और माल दे के नफ़ा ले सकते हैं तो पैसे दे के भी नफ़ा ले सकते हैं। ये सूद खोरों का एक आम जुमला है। अल्लाह ताला ने उसी जुमले पर फरमाया कि इसका नतीजा क्या होगा कि जो दोनों को एक जैसा करार देते हैं ये क़्यामत के दिन पागल जैसे होंगे, आसेबी होंगे, मकबूतुल हवास होंगे। अच्छा, अब फ़र्क क्या है सूद में और तिजारत में, क्या फ़र्क है? तो वैसे तो बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने एक फैसला कुन बात फरमा दी। फरमाया कि सीधा फ़र्क ये है कि सूद को खुदा ने हराम करार दिया है और तिजारत को खुदा ने हलाल करार दिया। तो जो मालिक है, जो खालिक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, उसका फैसला है, ये उसका फैसला है कि सूद हराम और तिजारत हलाल। लिहाजा सबसे बड़ा फ़र्क यही है। बाकी हिकमतें वो यकीनन मौजूद हैं, हमें ना पता हो तो हमारे फहम का कसूर, वरना वैसे हिकमतें हैं कि बंदा जब तिजारत करता है तो उसमें उसको डर भी होता है ना कि उसका माल ज़ाया हो जाएगा, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए। लेकिन सूद में क्या है, सूद में तो प्रॉफिट ही होना है। पैसे दिए हैं, अपने पैसे 100% महफूज, कैपिटल 100% महफूज और प्रॉफिट उसके ऊपर मिलेगा। जबकि तिजारत में एक बंदा 10 करोड़ की भी अगर कोई शॉप खोलता है तो हो सकता है कमाए और हो सकता है डबोए। तो इस अब जब कमाने और डबोने दोनों का इस्तेमाल होगा तो बंदा मेहनत करेगा, बंदा कोशिश करेगा, शॉप पे जाएगा, कस्टमर को सही तरीके से डील करेगा, अपने माल की देखभाल करेगा, लोगों के साथ जो है वो उसका बर्ताव अच्छा होगा, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो आदमी की कोशिश और मेहनत जो है वो तिजारत की वजह से बढ़ती है और सूद में जाती रहती है। सूद में क्या, एक बंदे के पास 10 करोड़ रुपया था, उसने दिया बैंक में, अब उसको महाना मिसाल के तौर पे 10 करोड़ के ऊपर उसे 5 लाख रुपया सूद मिल जाएगा। तो अब उसने क्या करना है, एक मरतबा पैसे जमा करवाए, साइन करके आ गया, एग्रीमेंट कर लिया, अब घर पे बैठा आवारगी करे या जो मर्जी करे, उसको पैसे मिलने। तो अब मेहनत किधर गई, ख़त्म हो गई। और मेहनत का ख़त्म होना ये मुआशरे से जो करने काम के अफराद हैं ये उनको ख़त्म करने के बराबर है, क्योंकि फिर मिजाज के अंदर हड हरामी रच बस जाएगी, काम चोरी जो है वो मिजाज के अंदर आ जाएगी। और जब टाइम इतना फारिग और फालतू होगा तो फिर अलल्ले तलल्ले कामों के अंदर पड़ जाएगा। तो ये हिकमतें हैं, लेकिन ये हम जैसे अपनी अक्ल से ये बयान कर रहे हैं, फैसला कुन बात वो है जो रब ने फरमा दी कि भाई सूद को खुदा ने हराम करार दिया है और तिजारत को खुदा ने हलाल बनाया है। बस ये सबसे बड़ा फ़र्क है, फिर उसके बाद हिकमतें। तो फरमाया कि अब जिसके पास रब की तरफ से नसीहत आ गई, ये हुक्म आ गया कि सूद से बचना है, तो फरमाया फिर वो बाज आ गया। तो अब वो जो पहले उसने किया था, जब ये आयतें नासिल हुई तो अब उससे पहले जिसने जो कुछ किया था, या आज के ज़माने में यूँ कह लें कि वो काफिर था और करता रहा, अब वो मुसलमान हो गया और उसने वो छोड़ दिया, तो अब वो जो पहले किया वो माफ़, और अब उसका मामला अल्लाह के सिपुर्द कि अल्लाह ताला कैसा उसके साथ मामला फरमाता है। लेकिन अगर कोई दोबारा करे खुदा का हुक्म उतरने के बाद, अब वो दोबारा करेगा तो फरमाया फिर ये जहन्नमी, फिर ये जहन्नम का मुस्तहिक है और मुद्दतों जहन्नम में रहेगा, अरसा दराज तक जहन्नम में रहेगा। तो ये है सूद। फिर अल्लाह ताला मज़ीद फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदाकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुकरे बड़े गुनाहगार को पसंद नहीं करता। सूद और तिजारत और सदका, इसके हवाले से फरमा दिया कि जो सूद है खुदा से मिटाता है, कि सूद से बरकत को मिटा दिया जाता है, सूद से बरकत को मिटा दिया जाता है। इसलिए दुनिया में अक्सर लोग जो सूद पे चल रहे होते हैं, और कुछ हो ना हो बरकत जाती रहती है, माल अगरचे बाकी रहे बीमारी आ जाएगी, या ख़ुद तबाह हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। और ये हम अपने पास पड़ोस में देखेंगे तो हमें ये मिसालें नज़र आ जाएंगी कि एक बंदा सही चल रहा था, सूद में पड़ा और तबाह हो गया, फैक्ट्रियां बिक गई, कारोबार तबाह हो गया, ख़त्म हो गया सारा कुछ। जबकि जो सदका है अल्लाह ताला इसे बढ़ाता है, इसे दुनिया में भी बंदे को फ़ायदा देता है, आखिरत के अंदर भी उसे सवाब अता फरमाएगा। और दुनिया में बिलफर्ज अगर ये चीज़ें ज़ाहिर ना हों तो आखिरत के अंदर सूद का मिटना और सदके का बढ़ना ये हर इंसान अपनी आंखों से देख लेगा। इसके बाद इरशाद फरमाया इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर न कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये हर बंदा मोमिन के हवाले से फरमा दिया, ईमान वाला हो, अच्छे काम करने वाला हो, नमाजी हो, ज़कात देने वाला हो, तो इसका अजर इसके रब के पास है, इन पर ना कोई खौफ और ना ये गमगीन होंगे। अब इसके बाद मज़ीद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए ईमान वालो, अगर तुम ईमान वाले हो, ए ईमान वालो अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। ये आयत मुबारका किस कदर ताकीदी अंदाज में बयान फरमाती है, यानी ए ईमान वालो भी फरमाया और फिर फरमाया अगर तुम ईमान वाले हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूद का छोड़ना ये इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला इसे इस ताकीद वाले अंदाज में बयान फरमाता है। तो फरमाया कि जो सूद बाकी है, कि जब यह आयत नाजिल हुई तो अब इससे पहले भी बहुत सारे मुसलमानों के सूद दूसरों पर चढ़े हुए थे, तो फरमाया अब लेने की इजाज़त नहीं। किसी को 10 लाख रुपया दिया था, लाख रुपया सूद अभी लेना था, तो जो असल माल है वो ले लो, जो सूद है फरमाया अब नहीं, अब ये छोड़ दो। वज़रू मा बाकिया मिनर रिबा, सूद में से जो बाकी है उसे छोड़ दो, जितना वसूल कर चुके वो चूंकि मना किया नहीं गया था लिहाजा मुआफ़ी, लेकिन अब नए सिरे से लेने की इजाज़त नहीं है। और उस पर भी मसीह क्या फरमाया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ाई का यकीन कर लो, और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए अपना असल माल लेना जायज़ है, न तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ और न तुम्हें नुकसान हो। ये फरमाया कि आयत उतर गई। अब इसके बाद जो सूद बाकी है उसका लेना हराम, और अगर अब लिया, जबकि खुदा ने हराम कर दिया, तो अब लिया तो फरमाया कि फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का, जंग का यकीन कर लो। अल्लाहु अकबर। ये जब आयत नाजिल हुई तो जो सहाबा किराम थे उन्होंने क्या किया कि जितने उनके सूदी मुतालबा थे सारे छोड़ दिए, और क्या उन्होंने अपनी ज़बान से क्या कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई की हमारे अंदर हिम्मत नहीं। ये है सूद, और ये है सूद की संगीनी की समझ के सहाबा किराम जो मुकद्दस ग्रोह है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता थे, उन्होंने फौरन कह दिया कि हमारा जितना किसी पे आता था सूदी हमने छोड़ दिया, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करें। और ये जंग आज करने वाले मौजूद हैं, आज बैंकों की सूरत में, आज जो है वो बड़े बड़े भाषण देने की सूरत में, फ़लसफे झाड़ने की सूरत में, सेकुलरिज्म की सूरत में, और मईशत नहीं चलेगी इसके बगैर, नित नए नामों के साथ आज लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं अल्लाह ताला से जंग वंग कर लेंगे, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो फरमाया कि हाँ, वो अगर तुम तौबा करो तो जो तुम्हारा असल माल है वो ले सकते हो। 10 लाख दिया था, 1 लाख रुपया सूद तो नहीं ले सकते, हाँ जो असल माल कर्ज दिया हुआ है वो तुम ले सकते हो, ना तुम किसी को नुकसान पहुँचाओ ना तुम्हें नुकसान। सूद लोगे तो उसको नुकसान, अपना छोड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान, तो लिहाजा ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना तुम्हें नुकसान पहुंचे। तो ये سود کے حوالے سے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے آیات مبارکہ تھی. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے, اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سود اور حرام کمائی کے جتنے طریقے ہیں اللہ تعالی ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن 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 آسان درس قرآن.